न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट लेकर अनुराग अन्वेषी एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट, स्वागत है आपका। आज बिहार में मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अब चिंतित करने लगी है। इन खबरों के अलावा हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में बारिश के पूर्वानुमान से किसान क्यों चिंतित हैं। आज के पॉडकास्ट में कोरोना संक्रमण पर भी कई खबरें होंगी। फिलहाल पहली खबर बिहार की मैट्रिक परीक्षा के नतीजों की। बिहार में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। बिहार बोर्ड ने रविवार की शाम आधिकारिक रूप से इसकी सूचना जारी की। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सोमवार दोपहर 3:30 पर मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रेस रिलीज के जरिए रिजल्ट जारी करने की सूचना दी जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परीक्षाफल की घोषणा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सोमवार दिनांक 5 अप्रैल को अपराह्न 3:30 किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी वहां मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आग ने तांडव मचाया हुआ है। एयरफोर्स ने राज्य सरकार के अनुरोध पर 2 चॉपर देने को हरी झंडी दे दी है। ये चॉपर ऑन डिमांड हर वक्त तैनात रहेंगे। मुख्य वन संरक्षक फॉरेस्ट फायर मानसी ने कहा कि हम ग्राउंड प्लान तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ चॉपर को उतारा जाए, कहाँ से चॉपर पानी भरेंगे ताकि रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। उत्तराखंड में ऐसा ही प्रयोग 2016 में किया जा चुका है। 2016 में 4,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल आग की चपेट में आ गए थे। अभी उत्तराखंड के 1,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल की वन संपदा आग की चपेट में आ चुकी है। इस बाबत रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के अधिकारियों व मंत्रियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने जानकारी दी कि राज्य में नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को मिलाकर 40 जगहों पर आग लगने की सूचना है। आग बुझाने के लिए 12,000 वनकर्मी और करीब 1,300 अग्निशमन दल के कर्मचारी रात दिन काम पर जुटे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि हरियाणा में अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की संभावना है। वहीं 6 से 8 अप्रैल के बीच बूंदाबांदी भी हो सकती है। 6 से 8 अप्रैल के बीच बरसात होने के पूर्वानुमान से हरियाणा के किसान चिंतित हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि इस वक्त अगर बारिश हुई तो गेहूं की फसल पर विपरीत असर पड़ सकता है। मंडी में भी गेहूं की आवक तेज है और वहां उसे बरसात से बचाने के लिए मंडी प्रशासन को मशक्कत करनी होगी। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अभी का मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल बना हुआ है। गेहूं की फसल अच्छी तरह से पक रही है और गेहूं की कटाई का काम भी तेजी से चल रहा है। बरसात की संभावना ने किसानों के मन में चिंता पैदा कर दी है। बीजापुर माओवादी मुठभेड़ में अब तक 24 जवान शहीद हो चुके हैं, कई जवान घायल भी हैं। लेकिन इन सब से जवानों के हौसले कम नहीं हुए हैं। इस हमले में घायल जवानों ने बताया कि बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर हुई इस घटना को 400 से अधिक माओवादियों ने अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान हमने माओवादियों को पीछे धकेलते हुए जमकर लोहा लिया। घायल जवान बलराज का कहना है कि आधुनिक हथियार के साथ साथ माओवादी अपने हाथों से बनाए हुए गोला बारूद से हमला कर रहे थे। आपको बता दें कि बलराज के पेट में गोली लगी है, तो एक अन्य जवान देवप्रकाश की पीठ में गोली लगी है। देवप्रकाश की पीठ में अभी तक गोली फंसी हुई है। इसके अलावा सेकेंड इन कमांडर संदीप द्विवेदी के सीने में 2 गोलियां लगी हैं। घायल जवान बलराज ने बताया कि माओवादी आधुनिक हथियार के साथ साथ देसी गोले बारूद से हमला कर रहे थे और हम उन्हें खदेड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। यही नहीं, प्लेन क्षेत्र में हमने उन्हें कई किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया था। इस दौरान हमें भी नुकसान हुआ, लेकिन उनको भी भारी नुकसान हुआ। जवान देवप्रकाश ने बताया कि हम चारों तरफ से घिर चुके थे, लेकिन हम एक तरफ फायरिंग करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इस दौरान माओवादियों को भारी नुकसान हुआ। अगर फिर मौका मिला तो माओवादियों को ढेर कर देंगे। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह के मुताबिक इस मुठभेड़ में हमारे 24 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि इस दौरान माओवादियों को भारी नुकसान हुआ है। इस मुठभेड़ में 25 से 30 माओवादी ढेर हुए हैं। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। देश में कोरोना के नए केस ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में रविवार को देश में कोरोना के 103,844 नए मामले सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना के एक दिन में 1,00,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस दौरान 477 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में इससे पहले कोरोना के सबसे ज़्यादा केस 17 सितंबर को आए थे। उस समय एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 98,775 दर्ज किया गया था। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत 52 दिन पहले हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना की रफ्तार 7 गुना ज़्यादा है। वहीं कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौतों के आंकड़ों में भी करीब 59% की उछाल आई है। कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 57,074 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में किसी राज्य में सर्वाधिक संख्या है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 222 मरीजों की जान गई। मुंबई शहर में रविवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 11,206 नए मामले सामने आए। इस हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक चलेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। रात के समय रेस्टोरेंट को सिर्फ टेक अवे और पार्सल सर्विस की अनुमति दी गई है। हर वीकेंड पर शुक्रवार को रात के 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिन के समय धारा 144 के तहत सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ खड़े होने पर पाबंदी लगा दी गई है, और रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी बिना वैध कारण के घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। सरकारी ऑफिसों को 50% कार्यक्षमता के साथ संचालन की इजाज़त दी गई है। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी की योगी सरकार ने फैसला किया है कि जहां भी कोरोना का एक मरीज मिलेगा, उसके आस पड़ोस के 20 घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इन 20 घरों को सील कर दिया जाएगा, जिससे कि कोरोना आसपास के इलाके में न फैल सके। अगर एक से अधिक केस मिलते हैं तो 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। यहाँ आवागमन पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को 14 दिन तक ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा। हालांकि बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स के लिए योगी सरकार ने कुछ अलग नियम बताए हैं। अगर किसी अपार्टमेंट में एक मरीज मिलता है तो उस पूरी मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक ही सील कर दिया जाएगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,178 नए मरीज मिले हैं। पूरे कोरोना काल में मध्य प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए हैं। यह आंकड़ा सामने आने के बाद एमपी देश में अब 8वां राज्य बन गया है जहां सबसे तेजी के साथ संक्रमित बढ़ रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 21,000 पार कर गई है। एक महीने में सबसे ज़्यादा 7 गुना मरीज बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भोपाल में एक दिन में 547 और इंदौर में 788 नए मरीज सामने आए। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सख्ती भी तेज की जा रही है। महाराष्ट्र की सीमा सील कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजस्थान सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को विदा दें। नमस्कार दोस्तों।